हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलवे साने पूजो ने सतत केवल ज्ञान पाने पूजो ने सतत केवल ज्ञान पाने।
बोलो भगवान महावीर स्वामी की दस लक्षण पर्व की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम लोग पिछले कई दिनों से लगातार अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आचार्य भगवंतों ने जो उपदेश दिया है उस पर विचार कर रहे हैं। हमारे जीवन में धर्म आवे ऐसा हमने पिछले दिनों चार प्रकार के धर्मों का विचार किया है। धर्म श्रेष्ठ वही है जिसका उद्देश्य अपने आत्मा की अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो। त्याग तपस्या जो भी हम धार्मिक अनुष्ठान के रूप में संपन्न करते हैं उन सब का एक ही उद्देश्य हो कि मेरे आत्मा का कल्याण हो, मैं कर्मों से मुक्त होकर के सिद्धत्व का अनुभव कर सकूं। ख्याति पूजा लाभ और संसार के भौतिक सुखों की आकांक्षा से हमने अनादि काल से धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान किया है, लेकिन उससे वास्तविक धर्म हम अपने जीवन में धारण कर सकें और अपने जीवन को अच्छा बना सकें। अपने अनुभव से हमने ये जान लिया है कि वो कार्यकारी नहीं होगा। सो हमने पिछले दिनों जैसे पृथ्वी के ऊपर कितना भी कचरा कूड़ा डालो, उसको खोदो कुचलो, लेकिन फिर भी जैसे पृथ्वी सौ बातों के लिए अपने अंतरंग में क्षमा भाव धारण करती है, ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में पृथ्वी से क्षमा भाव या सहनशीलता धारण करने का संदेश लेना चाहिए। स्वपन ने लिया। इतना ही नहीं, जल को अपन देखते हैं कि जिसमें मिला दो सो उसके जैसा ही हो जाता है, हिल मिल करके रहता है। सो जल से हमने अपने जीवन में मृदुता आवे, कोमलता आवे, हम भी सब जीवों के प्रति हिल मिल करके भाईचारे के भाव से रहें, इस प्रकार का संदेश हमने जल से लिया। हम वायु निरंतर बहते हुए देखते हैं, अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाती, जरा भी उसके मन में द्वंद नहीं है, अत्यंत निर्द्वंद होकर के विचरण करती है वायु, और कहीं कोई शल कपट निश्चलता उसके भीतर मालूम पड़ती है। सो हमने वायु से अपने जीवन में भी ऐसी सरलता और निश्चलता निर्द्वंदता आवे ऐसा संदेश लिया। हम अपने जीवन में आत्मा की विशुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सो मन वचन काय के द्वारा जो मलिनताएं मेरे आत्मा को मलिन बनाती हैं उनसे बचने के लिए देव से तपस्या करके उन बांधे हुए कर्मों को नष्ट करने का मैं उपाय सीखना चाहता हूं। सुबह उपाय मुझे अग्नि सिखाती है, जैसे कि अग्नि में कोई चीज पकाए जाने पर विशुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, जितनी भी उसमें मलिनता है वो नष्ट हो जाती अग्नि में जल करके, ऐसे ही मैं अपने देह से तपस्या की अग्नि जला करके अपने कर्मों को नष्ट कर सकूं, ऐसा संदेश मैंने अग्नि से ले लिया। इस प्रकार अगर हम देखें तो प्रकृति भी हमें धर्म धारण करने में सहयोग करती है। हम अपने जीवन में प्रकृति से संदेश लेकर के धर्म धारण करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। भैया जीवन में तो अगर अपन गौर से देखें तो जीवन की सच्चाई तो इतनी ही है कि हम शरीर से आत्मा अलग है इस बात का अनुभव कर सके। अभी तो हमारे जीवन में इस बात के लिए स्वीकृति ही नहीं दे पाता हूं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मेरे व्यवहार में दोनों की एक रूपता ही प्रकट होती है। सो मैं निरंतर उस सच्चाई को प्राप्त करने के लिए प्रयास करूं जिसमें कि मैं अपने शरीर और आत्मा को पृथक पृथक जान सकूं, मान सकूं, अनुभव कर सकूं। ऐसे भेद विज्ञान की प्राप्ति या आत्मज्ञान की प्राप्ति या आत्मस्वरूप की प्राप्ति को ही सत्य की प्राप्ति कहेंगे। एक तो सच पाया जाता है, एक सच हुआ जाता है और एक सच बोला जाता है। तीनों चीजों पर अपन विचार कर ले ताकि सत्य धर्म अपने जीवन में आ सके। सत्य को पाने के लिए अपन को निरंतर अपने शरीर से अनाशक्त होकर के अपने भीतर पड़ा हुआ जो मोह है और अज्ञान है उसको हटा करके आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तब हम उस सच्चाई को पा सकेंगे जो कि हमारे जीवन को आनंद का अनुभव दे सकेगी। एक बार क्या हुआ कि एक पिता के चार पुत्र थे। पिता का बड़ा मन था कि चारों बेटे सच्चाई को प्राप्त कर लें। अब की बात अलग है कि पिता का मन रहता है कि भैया को अच्छी नौकरी लग जाए, पैसा कमाऊं लगे हैं। लेकिन पहले तो ये था कि मेरे पुत्र सत्य को प्राप्त कर लें। जीवन में जो अत्यंत दुर्लभ है दो ही कलाएं, 72 कलाओं में से प्रमुख है एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। आजीविका के लिए अपन कितने प्रकार की कलाएं सीखने का परिश्रम करते हैं लेकिन अपने आत्मा के उद्धार के लिए अपन कोई कला सीखने का उपाय और परिश्रम नहीं करते। लेकिन पिता की भावना थी कि अपने जीवन का उद्धार करने के लिए भी ऐसा कुछ सीखे जिससे कि जीवन की सच्चाई उन्हें प्राप्त हो जाए। सो चारों से अपनी भावना व्यक्त करी। चारों ने कहा कि पिता हम सत्य को खोज करके पा करके लौटेंगे। समय दे दिया कि 12 वर्ष तो लग ही जाएंगे सत्य की प्राप्ति में। सो चारों निकले, एक वृक्ष के नीचे गांव से बाहर इकट्ठे होकर के कि कहा कि देखो 12 साल में इसी वृक्ष के नीचे अपन लौट करके आएंगे। जिसने जो पाया सच के बारे में वो सब पिता को बताएंगे और सब वहां से अलग अलग दिशाओं में सत्य की प्राप्ति के लिए चले गए। 12 वर्ष व्यतीत हो गए। पिता भी वृद्धावस्था को प्राप्त होकर अत्यंत अशक्त हो गए, खाट पर ही पड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बेटे सच को प्राप्त करके लौटेंगे। सो तीन बेटे तो लौट के आए, लेकिन चौथा बेटा लौट करके नहीं आया। कोई बात नहीं, आ जाएगा थोड़ी देर में। ऐसा सोच करके पिता ने पहले बड़े पुत्र से पूछा कि भाई तुमने सत्य के बारे में क्या प्राप्त किया? तो बहुत सारी ऋचाएं और गाथाएं जो उसने याद की थी वो पिता को सुना दी। उन्हें सुन करके पिता का मन अत्यंत उदास हो गया। दूसरे वाले बेटे की तरफ इशारा किया, उसने खूब सारे सूत्र कंठस्थ कर लिए थे, सो सब सूत्र पिता को सुना दिए। लेकिन पिता इससे भी संतुष्ट नहीं हुए कि तुमने सत्य पा लिया है। तीसरे वाले पुत्र की तरफ देखा उन्होंने, तो तीसरे पुत्र ने भी विभिन्न ग्रंथों की जो अच्छी अच्छी बातें थी सब धर्मों में, सो उन सबको सुना दिया। तीसरे पुत्र से भी पिता अत्यंत असंतुष्ट होकर के अशक्त को पहले से थे ही अपने बिस्तर पर बैठ गए कि चौथे पुत्र का इंतजार करें। सो उन तीनों भाइयों ने बताया कि चौथा भाई आ तो गया है, लेकिन वो वहीं पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उसकी हालत तो बड़ी खराब है, शरीर पर वस्त्र भी शेष नहीं है। खाने पीने को क्या कहें, जर्जर शरीर हो गया है और वहीं पर ध्यान में वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। पिता अत्यंत अशक्त हो गए, लेकिन उनके अंदर उत्साह आ गया कि मैं चौथे वाले पुत्र से मिलूंगा और पूछूंगा कि तुमने सच प्राप्त कर लिया। और तीनों पुत्रों के साथ वो गांव से बाहर वृक्ष के नीचे जहां चौथा पुत्र बैठा था वहां पहुंचे। जाकर के देखा कि अत्यंत निर्विकार दशा में और पुत्र ध्यान में लीन, चेहरे पर अत्यंत शांति और आनंद बिखरा हुआ है, बैठा हुआ है। उसे देख करके पिता को अत्यंत उत्साह हुआ, अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने तीनों से कहा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरे एक पुत्र ने सत्य को प्राप्त करने का साहस कर लिया। सो भाई, कुछ बातें सत्य के बारे में सीख लेने से सत्य प्राप्त हो जावे ऐसा नहीं है। सत्य को प्राप्त करने के लिए जो बातें अपन ने सत्य के बारे में जानी है उनको अपने आचरण में लाने से ही सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा अपन को विचार करना चाहिए। सो ये तो बहुत कठिन है, लेकिन हमारा लक्ष्य तो इसी की प्राप्ति का है। सो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को सच्चा बनाना, निरंतर प्रयत्न करने के लिए तो अपन पुरुषार्थ कर ही सकते हैं। सच्चे होने के लिए, सच्चे होने के लिए पुरुषार्थ करें तो आठ बातों का आचार्य भगवंतों ने कहा कि ध्यान रखना। सत्य को प्राप्त करना यानी अपने आत्म स्वरूप की वितराग अवस्था को प्राप्त कर ले। सच्चे होने का अर्थ इतना ही है कि हम अपने जीवन में जो वास्तविकता है उसके अनुरूप अपने आचरण को भी बनाने का प्रयत्न करें तो हम सच्चे होंगे। सत्य के प्रति कभी संदेह नहीं करना। अपन लोग झूठ पर तो विश्वास कर लेते हैं लेकिन सच्चाई जानते हैं। विश्वास नहीं कर पाते, उस पर संदेह कर लेते हैं। सो आचार्य भगवंतों ने हमें सलाह दी कि सबसे पहला काम तो ये करना सच्ची होने के लिए कि कम से कम सच्ची के प्रति संदेह तो नहीं करना, और दूसरी चीज सत्य के लिए स्वीकार किया है तो कितने भी विपत्तियां आवे उनको सहन करना और कभी झूठ का सहारा नहीं लेना। जीवन में धर्म का धारण किया है तो विषय सुखों की तरफ कोई ले जावे तो वैसी आकांक्षा नहीं रखना। धार भ्रष्ट भव सुख वांछा भानो, जीवन में धर्म को धारण करके संसार के सुखों की आकांक्षा नहीं रखना। सत्य को प्राप्त करना हो तो सच्चे होने के लिए हम कभी भी झूठ का सहारा नहीं लें। एक बार एक बेटे को शहर में मां पढ़ने के लिए भेजती है, समझाती है कि देखो सच्चे रास्ते पर चलना, सच्ची बोलना और जाओ विद्या का अध्ययन करो। अब की बात अलग है कि अपन अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं तो साथ में ये कहते कि पढ़ लिख के ज्यादा नंबर पाइयो, भले ही मंदिर जा पाओ और हाथ ठोकाने पड़े तो खाली उन्हें जा पाओ मंदिर तो नहीं जाइए, तुम तो पढ़ो पहले अच्छे नंबर लिया है। कितना अंतर हो गया अपने भावों में। सो भाई अपन अपने परिणाम को संभाले और अपने जीवन के कल्याण के लिए ऐसा मिथ्या उपदेश तो ना देवे, जीव को जैसा करना सो वैसा करे, लेकिन हम क्यों निमित्त बने ऐसा विचार करके अपन तो हित का ही उपदेश दें। सो माता ने पुत्र को पढ़ने के लिए भेजने से पहले हित का उपदेश दिया कि देखो कभी भी काम बनता जान करके झूठ का सहारा मत लेना, संसार में कितनी उत्पत्ति आ जाए लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेना, झूठ को बड़ा नहीं मानना, सच ही जीतता है, उसका ही हमने आलंबन लिया है। सो थोड़ी दूर जंगल से जब वो गुजर करके शहर की तरफ पहुंच रहा था सो जंगल में डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और उससे पैसे मांगे। पिता माता ने 400 रुपए उसके खर्च के लिए अंदर की जो बनियान पहने था उसके भीतर सिर के रख दिए थे, सिर दिए थे, पहले ऐसे ही अपनी संपत्ति संभालने का उपाय करते थे भैया। सो उस व्यक्ति ने डाकू ने पूछा कि निकालो पैसे, कितने पैसे हैं, तो उसने कहा 400 रुपए। कहां रखे हैं, मेरे अंदर बनियान के भीतर माने सिल दिए। लो डाकू को विश्वास ही नहीं हुआ, बिल्कुल 1% झूठ बोल रहा, सच पर विश्वास नहीं होता, झूठी पर विश्वास जल्दी कर लेते हैं। अपने संस्कार ऐसे हो गए, अपन ने गांधी पूर्ण डाले हुए अपने भीतर संस्कार, अपन ने अपने मन से देख देख करके सीख लिया संसार में, क्या सीखा अपन ने, जी सीख लिया। सो उसने विश्वास नहीं किया, डाकू अपने सरदार के पास उस बच्चे को लेकर के गया कि जी इसको पकड़ा हमने और जी ऐसा कहता है झूठ बोलता है कि 400 रुपये रखे हैं और बनियान के भीतर मैंने रख दिए हैं, सिल दिए हैं, दिखाई पड़ते नहीं है। सरदार ने पूछा कि भाई तुम्हारे पास 400 रुपये हैं, बोले हां, कहां रखे हुए हैं, बोल, बनियान के नीचे मैंने सिल दिए हैं। डाकू को भी मन में आया कि इतना सच बोल रहा है, वास्तव में सची ना, सो कहा निकाले। सो उसने कमी जुगाकर उतार करके बनियान में जैसे माने 400 रुपए दूसरे नंबर पर कहा कि जो अपने जीवन में सत्य अपन प्राप्त करने के लिए बढ़ रहे हैं तो कभी भी झूठ का आलंबन न ले, विपत्ति आने पर सच को न छोड़े, सच्चाई से कभी घृणा न करे, मुख न मोड़े। हो जाता है ऐसा अपने जीवन में कि सत्य के प्रति, सच्चे व्यक्ति के प्रति अपने मन में उतना प्रशंसा का भाव नहीं आ पाता है, बल्कि कई बार घृणा का भाव आ जाता है। सो आचार्यों ने हमें सावधान कर दिया कि नहीं भाई, सत्य को जान करके जो सत्य का पालन कर रहा है, जिसके जीवन में सत्य आ गया है, कम से कम उससे घृणा तो मत करो। और इतना ही नहीं, अपने जीवन में क्या सच है क्या झूठ है ये जान करके जो सच है उसी रास्ते पर चलो। झूठे सैकड़ों रास्ते हों लेकिन उनके लिए अपनाने का प्रयत्न नहीं करना, वरना तुम अपने जीवन को सत्य की तरफ नहीं ले जा पाओगे। और अगर कोई सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हो, सत्य की आराधना में लगा हो, उससे कोई भूल चूक हो जाए तो उसको ध्यान नहीं देना। इतना प्रयास करके वो रास्ते पर सच्चे चल रहा है, संस्कारवश हो सकता है कि उससे कोई भूल चूक हो जाए, झूठ व्यवहार उसके देखने में आ जाए, लेकिन हम किसी और से नहीं कहेंगे, कहना हो तो उसे ही इशारा कर देंगे कि देखो तुम चले तो सच के रास्ते पर, लेकिन अभी तुम्हारे संस्कार कमजोर हैं, थोड़ा साहस करके और ठीक से चलो सच के रास्ते पर, ऐसा उसे सलाह देंगे, लेकिन उसके भूल चूक को दुनिया भर को बताते नहीं फिरेंगे। और इतना ही नहीं, अगर कोई सच्चाई का पालन करते हुए कभी विचलित ही होने लगे, सच्चाई को छोड़ करके झूठ का आलंबन लेने लगे, तो उसको धीरे से समझाना कि नहीं भाई, तुमने इतना साहस करके सत्य को स्वीकार किया, अब थोड़े से के पीछे अपना ईमान क्यों छोड़ते हो, अपनी सच्चाई क्यों छोड़ते हो, तुम तो पुनः अपनी ईमानदारी में और सच्चाई में भले ही दो रोटियां मिले, तुम तो उसी पर आरूढ़ रहो। सो ऐसे अपन निरंतर अपने लिए नहीं दूसरे के लिए ही सही, अपने मन में भी अपन ने सत्य धारण किया है और कभी कभार अपन सत्य से विचलित होने लगे, झूठ का आलंबन लेने का मन हो जावे कि देखो इतना होगा सहन करत करत, अब तो हम भी झूठ का आलंबन लेंगे, सब दुनिया तो कर रही बेईमानी, हम भी करेंगे। नहीं भाई, ऐसा विचार आते ही अपने मन को समझा लेना कि ये तो ठीक नहीं है, मैंने बड़े किसी पुण्य के उदय से सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाए हैं और अब मैं पीछे ना हटूं। देखो हो जाता है ऐसा, व्यक्ति सच्चे रास्ते पर चल रहा है लेकिन संस्कारवश उस सच्चे रास्ते से हट करके और झूठ के रास्ते पर चल सकता है। उसमें कारण क्या है? कारण ये है कि उसकी पुरुषार्थहीनता, वर्तमान का वातावरण और कर्म का तीव्र उदय। सो अपन इन सबका विचार करके और उसे सच्चाई में स्वयं को भी और दूसरे को भी स्थिर करने के लिए प्रयत्न करें। हमेशा सच से प्रेम रखें, सच्चे व्यक्ति से प्रेम रखें। रखते तो हैं अपन, मन ही मन रखते हैं। जो ईमानदारी से चल रहा होगा सो उसकी चार लोगों के बीच में प्रशंसा नहीं करेंगे, साथ तो देंगे बेईमानी का, भीतर भीतर कमरा में से बैठते के हे तो सच्चा आदमी, गरीब है भले लेकिन है बहुत ईमानदार, ऐसा भीतर भीतर प्रशंसा करेंगे, खुल के नहीं कर पाते अपन। जी अपन की कमी है, निकालना चाहिए अपने जीवन से ये कमी कि हम खुल करके सच्चाई की प्रशंसा कर सकें, उसके प्रति प्रेम व्यक्त कर सकें। भले ही हम उस सच्चाई का स्वयं पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है, जो सच्चे ईमानदार जीवन जीवन को जी रहा है, हम कम से कम भले ही वो दीनहीन और गरीब परिस्थिति का हो, लेकिन हम उसके प्रति प्रेम भाव रखें, उसे हृदय से लगाने के लिए हमेशा तैयार रहें, दुत्कारें नहीं। होता क्या है, सच्चाई को जो हम दुत्कार देते हैं, सच्चे व्यक्ति को दुत्कार देते हैं, उसका तिरस्कार कर देते हैं, तो मानिए वास्तव में हम अपने जीवन में आती हुई सच्चाई का ही तिरस्कार कर देते हैं। फिर हमारे जीवन में सच्चाई आ नहीं पाएगी, उसका सम्मान हम नहीं कर पाते। बच्चे अगर सच्ची बोले तो फिर उनको पनिशमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रेम से कि हां बेटे कोई बात नहीं, अब ऐसी गलती नहीं करना, तुमने अपनी भूल को गलती को हमें सच सच बता दिया, तुम झूठ बता करके बच भी सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने इतना सच बताने का साहस किया, हम तुम्हारा सम्मान करते। तब उसके मन में और अधिक सच बोलने की भावना होगी, और नहीं तो फिर वो झूठ का आलम्बन लेकर के बचने का प्रयास करेगा। विदिशा में हमारे देखते देखते एक घटना हुई, एक व्यक्ति थे, वो एक दिन बड़े दुखी मन से अपने 5 साल के पुत्र को लेकर के आए और मेरे से कहा कि महाराज इतना 5-6 साल का हो गया, आज दिन तक उसने कभी दुनिया से भले ही झूठ बोला हो, लेकिन मैं उसका पिता हूं, मेरे से कभी झूठ नहीं बोला, सदा सच ही बोला, लेकिन आज का दिन मेरे जीवन में अत्यंत कष्टकारी हो गया, क्योंकि मेरे बेटे ने ही मेरे से झूठ बोल दिया। कैसा कष्ट लगता है जब अपना ही कोई व्यक्ति अपने से छुपाए और झूठ का आलम्बन ले अपने ही प्रति, तो दुख तो लगेगा। सो पिता अत्यंत दुखी थे, बेटे को समझा दो महाराज आप, हमने कहा आपके सामने तो नहीं समझाएंगे, हम उससे बात कर लेंगे। सो बेटे से जब हमने बात की कि क्यों तुमने झूठ बोला पिता से, तो उसने स्वीकार किया कि हां बोला। हुआ क्या था, बोलने की मजबूरी थी क्या, बोले हां। हुआ यह कि मेरे सिर में बहुत दर्द होने से मैं अपने स्कूल का काम पूरा नहीं कर पाया, और जैसे ही गुरु जी ने पूछा कि तुमने जो सवाल हल करने दिए थे वो पूरे पूरे ठीक किए कि नहीं, मैंने कहा कि गुरु जी मेरे सिर में दर्द था, मैं कर नहीं पाया, लेकिन शीघ्र ही करके आपको दिखा दूंगा। मेरे बाजू वाले बच्चे ने एक भी नहीं किए थे सवाल, लेकिन अपनी कॉपी बिना खोले ही गुरु जी के पूछने पर कि सवाल कर लिए, उसने कहा कर लिए, और बैठा रहा वो, और मुझे गुरु जी ने खड़े करके बेंच के ऊपर खड़े रखा और पिटाई भी करी, बेंच भी मारे। ऐसा देख करके मुझे लगा कि इससे अच्छा तो मैं भी झूठ बोल देता तो बच जाता पिटने से, और अब अगर जाकर के घर में पिताजी से कहूंगा कि मैंने सच बोला और गुरु जी ने मुझे पिटाई करी, तो पिताजी भी मुझे और पिटाई करेंगे। ऐसा मेरे मन में विचार आया, सो मैंने पिता से तो झूठ का आलम्बन ले लिया और झूठ बोल दिया। बताओ कैसे अपन झूठ का आलम्बन लेते हैं, सच को छोड़ देते हैं, जो कि अपने मन में भावना रहती कि मैं सच का आलम्बन लूं, लेकिन अपन क्योंकि सच का सम्मान होते नहीं देखते हैं, उसका तिरस्कार होते देखते हैं, उसको दंडित होते देखते हैं, तो सच को कौन स्वीकार करेगा, कौन उसका आलम्बन लेगा। तो अगर हम अपने जीवन में सच को पाना चाहते हैं, सच्ची होना चाहते हैं, तो कम से कम सच का सम्मान करना सीखें। कभी भी हमारे द्वारा सच का तिरस्कार ना हो जावे, और जहां जिसके बीच भी बैठे सच्चाई की ही प्रशंसा करें, उसके ही गीत गावे। हम व्यर्थ की दूसरे के कामों की तो प्रशंसा करते हैं, उसके झूठ की तो, उसकी चोरी की तो, उसके पापों की तो चर्चा करेंगे कि देखो ऐसे इस चाइल्ड से करी, उसने चोरी के तू पता नहीं लग पाई, ऐसी झूठ बोली कि देखो, अपनी बर्बादी करने के लिए कि हमने ऐसी झूठ बोली थी कि कोई को खुल नहीं पाई, पता नहीं लग पाई। अपने झूठ की दूसरे से प्रशंसा करते हैं, स्वयं भी अपने झूठ की प्रशंसा करके प्रसन्न होते हैं। नहीं भाई, हम हमेशा सच्चाई की प्रशंसा करेंगे, चार लोगों के बीच सच्चाई के ही गीत गाएंगे, सच्चे लोगों की ही महापुरुषों की प्रशंसा के गीत अपने मन में गाएंगे तो हमारा जीवन सच्चा हो सकता है। और तीसरी चीज बहुत साधारण सी लगती है लेकिन दूसरे के लिए हर्षकारी हो, नहीं बोलना चाहिए ऐसा उपदेश दिया है। सच तो बोलना चाहिए जो कि हितकर हो और प्रिय हो। प्रिय का मतलब कहते सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा सच हो जो कि दूसरे का शिव अर्थात कल्याण करने वाला हो, जो कि उसके आत्म स्वरूप में बाधक न बने बल्कि साधक बन जाए, ऐसा सत्य हो। सो आचार्य भगवंतों की तरफ अगर अपन ध्यान देवे और ऐसे सत्य की साधना करें, वैसे तो हो सके तो वचन का व्यवहार कम से कम करें, हित मित प्रिय वचन बोले, लेकिन कम से कम अहितकारी वचनों का अभ्यास जो अपन को है वो अपन छोड़े। क्रोध लोभ भीरुत्व हास प्रत्याख्यानानुवीचि भाषणम च पंच, ऐसे पांच प्रकार के भावों से अपन वचन का प्रयोग न करें। क्रोध की अवस्था में वचन न बोले, लोभ से प्रेरित होकर के वचन न बोले, हंसी मजाक में वचनों का प्रयोग न करें और भयभीत होकर के भी वचन न बोले। जब भी बोले सोच विचार के आगम के अनुरूप वचन बोले जो कि दूसरे के लिए हितकारी हो। सत्यम वद प्रियम वद, सच बोलो और प्रिय बोलो। भैया अपन कह देते हैं कि सच तो कड़वाई होता है, प्रिय थोड़ो होता है, सच्ची बात थोड़ी अच्छी लगत है। भैया अच्छी लगे चाहे न लगे, लेकिन हम अपने अच्छे मन से तो बोले, सच कड़वा नहीं होता। अपने कड़वे मन से कही गई सब बात सच को भी कड़वा बना देती है। सो हमारे मन को कड़वा नहीं करना चाहिए, भले ही हम सत्य बोले तो वो हितकारी ही होगा, दूसरे का अहित नहीं कर सकेगा। ऐसा सच भी नहीं बोलना जो कि अप्रिय हो और ऐसा झूठ भी नहीं बोलना जो कि प्रिय हो। सिर्फ एक ही चीज रखी कि सत्यम वद प्रियम वद, सच बोलो और प्रिय बोलो। सो एक बार एक राजा का उदाहरण आता है, वैसे अपन जानते हैं कि ऐसा अप्रिय जैसे कि किसी को कह दो, इसी सभा में कह दो कि भैया आधे जने समझदार हैं, एक तो ये हो गया कथन करने का ढंग, और आधे जने तो मूर्ख हैं, जाके दो अगर तो प्रिय है ये सत्य है तो सत्य, लेकिन प्रिय लगेगा। किसी को कहो कि तुम अज्ञानी हो तो ये कहो कि देखो तुम फलानी चीज के बारे में नहीं जानते, मगर तुम्हारा इस चीज में तो बड़ा दखल है, तुम बहुत ज्ञानवान हो अपने विषय में। तो ये कहना अलग बात, सच उसमें भी है, लेकिन ऐसा सच जो कि अप्रिय हो अपन उपयोग में नहीं लेंगे। आधा गिलास भरा है कि आधा खाली है, दोनों में से जिस प्रकार के वचन बोलना हो वैसे बोले जा सकते हैं। सच तो दोनों में ही है, लेकिन एक प्रिय है एक अप्रिय है, एक मन को विचलित करने वाला है एक मन को आशान्वित करने वाला है, उत्साहित करने वाला है। एक राजा साहब के यहां पर सभा में एक कैदी को लाया गया, किसी अपराध में उसको जेल में बंद कर दिया था, फांसी की सजा होना थी। अब फांसी की सजा होना थी तो उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। सो उसने कहा कि मुझे तो राजा से मिलना है। तो लोगों सोचा कि शायद मर्सी अपील करेगा, दया की भीख मांगेगा राजा के पास जाकर के। चलो भाई ले चलो राजा के पास। सो राजा के पास ले गए, सो उस अपराधी ने उस कैदी ने जितनी गालियां हो सकती थी राजा को दी, लेकिन जिस भाषा में दी वो भाषा को राजा समझते नहीं थे। सो मंत्री जी के तरफ इशारा किया, जो बड़े मंत्री जी थे, कि क्या कह रहा है ये अपराधी और कैदी। सो बड़े मंत्री जी ने अत्यंत दया भाव से युक्त होकर के कहा कि कैदी आपसे अपने अपराध की क्षमा मांग रहा है, आप उसे क्षमा दान दे ऐसी याचना कर रहा है। लेकिन दूसरा जो मंत्री था, जो बड़े वाले मंत्री से ईर्ष्या रखता था, होता है ऐसा, सो वो फौरन बोल पड़ा कि नहीं झूठ बात, जो बड़े मंत्री जी कह रहे उसकी प्रशंसा में ऐसा नहीं है, वो तो गालियां दे रहा है राजा को। राजा साहब ने दोनों की बातें सुनी और कहा कि जाओ, मैं कैदी को क्षमा दान देता हूं। बड़े मंत्री की बात ज्यादा सच है, क्योंकि उसमें एक जीव के प्राणों की रक्षा का भाव छिपा हुआ है, और तुम्हारे सच में तो दूसरे का अहित छिपा हुआ है। भले ही उसने झूठ कहा, लेकिन दूसरे के हित के लिए कहा, तो सत्यमवद प्रियमवद ऐसा अपने भीतर विचार हमेशा रहना चाहिए। एक और घटना है, इन दोनों से अपने मन में स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में हमें कैसे वचन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि अपना सत्य धर्म भी बचा रहे और दूसरे का अहित भी ना हो। राजा के सामने तो मंत्री को झूठ बोलना पड़ा, लेकिन ऐसी स्थिति की हमें झूठ भी ना बोलना पड़े और हमारा सत्य धर्म का पालन हो, दूसरे के प्राणों की रक्षा भी हो, जो प्रिय भी हो। एक राजा साहब को अपने चित्र बनवाने का भाव हुआ, उन्होंने देश के कलाकारों को आमंत्रित किया कि मेरा एक सुंदर सा चित्र बनाओ। सो तीन कलाकार आए, उन तीन कलाकारों ने अलग अलग राजा के चित्र बनाए और दिखाए राजा को। पहला वाला चित्र राजा ने देखा, राजा का अत्यंत सुंदर चित्र था, जिसमें राजा की दोनों आंखें बहुत सुंदर दिखाई गई थी, लेकिन ओरिजिनली राजा के तो एक आंख में रोशनी थी नहीं, सुंदरता दोनों आंखों की उस फोटो में देख करके राजा को प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भाई हे तो बहुत प्रिय, लेकिन सच नहीं है। सो रिजेक्ट हो गए। दूसरे वाले ने सोचा कि देखो, अपन तो जैसा है वैसा बना, अच्छो लगो चाहे नहीं लगे, हमने तो क्या भाई, अब बुरा लगे तो लगे है, ऐसा कहते अपन कि हमने तो सब चीज कह दी, तुम्हें बुरा लगे सो लगे मानत रहो। लेकिन विचार किया करो आप, दूसरे वाले चित्र में राजा की एक आंख फूटी है ऐसा बता दिया। सो दूसरे वाले चित्र को देख करके राजा ने कहा कि है तो सच, लेकिन प्रिय नहीं है, भला नहीं जान पड़ता है। सो वो भी रिलेक्ट हो गए। तीसरे वाले ने चित्र बना करके दिया, वो पास हो गया। भैया कहानी में तो तीसरा पास करनी पड़नी तो कहा मत तो भाव कहानी को है कि नहीं, तो ऐसा दिखा देना। तीसरा वाला उसने बनाया कैसे था, उसने राजा बहुत शक्तिशाली है, बलवान है, ये दिखाने के लिए उसके हाथ में धनुष बाण लिए हुए है, तीर चला रहा है और बाण धनुष पर साधे हुए है, ऐसी अवस्था का चित्र बनाया। सो बाण चलाते समय तो एक आंख बंद रहती है, एक खुली रहती निशाने की तरफ, वैसा चित्र देख करके राजा अत्यंत प्रसन्न हुए कि भाई सुंदर भी लग रहा है और सच भी है, इसमें सच्चाई भी दिखाई गई है, साथ में राजा के गुणों की प्रशंसा में उनसे धनुष बाण लेकर के निशाना लगाते हुए दिखाया गया। भैया ये तो घटना है, अपन इससे संदेश देंगे कि हम भी एक तो झूठ का सहारा न लेना पड़े ऐसा प्रयास करें, अधिक मौकों पर सच का ही सहारा लें,
दूसरे के लिए हितकारी हो, कल्याणकारी हो, ऐसे ही सच का आलंबन लें तो हम अपने जीवन में सच्चाई को प्राप्त कर सकते हैं, सच्चे हो सकते हैं। जब हम अपने जीवन में सच बोलने का अभ्यास करेंगे भैया, सच बोलने से तो मुक्ति मिल जाती है। अपन को ऐसा विश्वास नहीं होता, लेकिन पशु पक्षियों ने सच का पालन करके मुक्ति पाई, ऐसी घटना उल्लेखित की गई है कि बाबा जी रास्ते में से गुजर रहे थे कि जो सच बोलता है, सच का आलंबन लेता है, वो मुक्त हो जाता है। एक पक्षी पिंजरे में बंद सुन रहा था, वो बहुत दिन से सोच रहा था कि इस पिंजरे से कैसे मुक्त हो जा रहे राज, तो उसको बड़ी अच्छी लगी बात कि सच बोलने से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उसने सोचा कि प्रयोग करना चाहिए, बाबा जी झूठी थोड़ी कह सकते। उसने क्या किया, पड़ोसी देश का कोई व्यक्ति उस सेठ साहूकार से मिलने आया जिसके यहां पर कि ये तोता पला हुआ था, पक्षी पला हुआ था। वो व्यक्ति उससे मिलना नहीं चाहता था, तो उसने अपने नौकरों से कहलवाया कि कह दो सेठ जी है नहीं। सो नौकर ने जैसे ही आकर के पक्षी के सम्मुख ही कहा उस व्यक्ति से कि सेठ जी है नहीं, मिलना नहीं चाहते ये तो अलग बात है, लेकिन है नहीं देते थे। पक्षी से नहीं रहा गया, पक्षी ने कहा कि ये तो झूठ कहते हैं, सेठ जी भीतर है, मिलना नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसा कहलवा दिया। अब तो बात बिगड़ गई, बदनामी हो गई। उस नौकर ने जाकर के सेठ जी से कहा कि हमने तो जैसा आपने कहा था वैसे ही कहा, लेकिन इस जो आपने पाल रखा है पक्षी, उसने सारा मामला गड़बड़ कर दिया। सच बोल करके देखो, मैंने कोई अगर सच्ची कह दी वो तो मामला भर गया, उल्टा हिसाब हो गया। सो उसको क्रोध आ गया, सेठ को उसने कहा कि ऐसे पक्षी से रखने से कोई मतलब नहीं निकाल के मार कर। पक्षी एक कहीं तो चाहता था, छत की मेड़ पर बैठ करके उसने कहा कि बाबा जी ठीक कहते थे कि अगर सच का आलंबन लेंगे तो अपन मुक्त हो जाएंगे। भैया ये तो कहानी कितनी सही है कितनी झूठी है इसका विचार न करें, अपन तो ये देखें कि उसका भाव हमारे लिए उपयोगी है। हम भी जितनी बार हो सके दिन में अधिक से अधिक सच का ही आलंबन लें, झूठ का आलंबन ना लेना पड़े, ऐसा प्रयास करें और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए प्रयत्न करें। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक जग, मग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिव्य दर्शन करने वाला है। जब जग बिस्याने रच पच कर गाफिलने जाने सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोता हूँ। निशाता सन्नाटा बन में बन चारी चढ़ते हो, तब शांत निराकुल मानस तन तत्वों का चिंतन करते हो, करते तप शैल नदी तप पत्थर तल बरसाती घड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दाना की घड़ियों में, अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फूलिया, भव वंदन कर कर टूट पड़े खिल
एक प्रेमानुराग और आखिरी वाला अति मध्यानुराग, ये चार प्रकार के अनुराग हैं। साधर्मी के प्रति, वीतरागता के प्रति, अहिंसा के प्रति अगर ऐसा अपना अनुराग हो तो अपना जीवन तो अच्छा बनता ही है, अपने आसपास परिवेश का भी जीवन उन्नत होता है। अगर दृष्टि निर्मल है तो इस प्रकार के चार अनुराग अपने आप आएंगे अपने भीतर। अब तो राग हो सकता है, राग के साथ साथ दूसरे से द्वेष जरूर होगा, दोनों की जोड़ी है राग द्वेष की, और अगर अनुराग है तो विशुद्ध। धर्मानुराग का मतलब है अपने धर्म में स्थिर रहना, धर्म से विचलित नहीं होना, वीतरागता और अहिंसा से विचलित नहीं होना। ऐसे बहुत से अवसर आएंगे जबकि हम अपनी वीतरागता और अहिंसा से विचलित होंगे, पर अपने आप को अहिंसा और वीतरागता जो कि रत्नत्र धर्म है उस धर्म में समता भाव में स्थिर रखना। तमाम सुख दुख की विषमताएं जीवन के बीच में आएंगी लेकिन उन सब में समता का स्वाद लेना, उससे विचलित नहीं होना, यह धर्मानुराग माना जाएगा। जैसे कि सीता जी को जब रामचंद्र जी ने और वनवास दे दिया था जंगल में घने, छुड़वाने के लिए तीर्थ यात्रा के बहाने सेनापति कृतांत के हाथ से रथ में बिठा करके भेज दिया था, और सेनापति कृतांत वक्र ने भी रथ को घने जंगल में छोड़ करके सीता को उतरने के लिए कहा था, तब सीता जी ने क्या कहा था, क्षण भर को तो वो मूर्छित हो गई लेकिन महापुरुष है, दृष्टि से संपन्न है। तब उन्होंने क्या कहा, कृतांत वक्र रोने लगे तो उनको समझाया तुम्हारी गलती नहीं है। कृतांत वक्र ने कहा कि मेरे कर्मों की तो गलती है, जो मुझे किसी की नौकरी करना पड़ी और किसी की आज्ञा मान करके, मुझे अपने राजा की आज्ञा मान करके ये अपराध आपको जंगल में छोड़ने का करना पड़ा। आज अपन नौकरी को बहुत अच्छा मानते और कृतांत वगैरह कह रहे हैं कि मुझे इतनी निकृष्ट नौकरी करना पड़ी, दूसरे के मातहत रहना पड़ा चार पैसे के लिए, धिक्कार है मेरा जीवन मेरे कर्म, ऐसा कह रहे हैं वो। दूसरे का आदेश और आज्ञा माननी पड़ी मुझे, और सीता जी से वो जब कहते हैं कि मैं वापस लौटूंगा, रामचंद्र जी को कुछ कहना हो तो सिर्फ इतना ही कहा था सीता जी ने कि मेरे कर्मों का फल मुझे मिला, रामचंद्र जी उसमें निमित्त बने हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। पर जाते समय रामचंद्र जी से सिर्फ इतना ही कहना, लोगों के कहने से अपवाद लगाने से जैसे मुझे त्याग कर दिया, ऐसे ही कभी किसी विपत्ति आने पर अपने धर्म को मत त्याग देना, अपने धर्म में स्थिर रहना, धर्म से विचलित मत होना। इतनी बड़ी बात अपन लोग हमेशा पढ़ते हैं, पर क्या छोटे छोटे से प्रलोभन मिलने पर क्या अपने अहिंसा और वीतरागता से विचलित नहीं हो जाते अपन? यही अपना धर्मानुराग, जरा विचार करें, अपने भीतर धर्मानुराग अगर है तो हम अहिंसा और वीतरागता से विचलित नहीं होंगे। थोड़े से स्वार्थ के पीछे अपनी अहिंसा और वीतरागता को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा अपने भीतर भाव आना चाहिए। एक बार की मेरे जीवन की घटना है, जब मैं अस्वस्थ हो गया 1982 में मुनि दीक्षा के बाद, 2 महीने बाद ही, और एक बूंद भी पानी पेट के भीतर नहीं जा पाता था। 7 दिन गुजर गए, जो जाता था वो सब बाहर हो जाता था, सब लोग परेशान। आचर्षी तक समाचार दिया, आचर्षी भी चिंतित। उन्होंने हर दिन चिंता की, लेकिन जब 7 दिन हो गए तो बोले कि मैं भी चलूंगा आहार में, पहले आहार करवा के फिर आहार चर्या के लिए जाऊंगा। आचर्षी भी गए, बाकी सब मुनि महाराज जी तो थे हमसे बड़े, मुनि महाराज जी, समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज आजू बाजू खड़े हमेशा रहते थे 7 दिन तक। और जाकर के आचर्षी भी वहां पर आहार के समय दूर खड़े होकर के देखने लगे कि थोड़ा बहुत आहार पहुंच जाए। तो फिर थोड़ा सा चेंज करवाया कि नहीं भाई उल्टी हो रही है तो पानी मत देना पहले, पहले तो थोड़ा कोई रस वगैरह दो और फिर मखाने इत्यादि दे करके थोड़ा आधार पेट में तो पहुंच जाए, फिर बाद में देना पानी। तो देने वाले ने रस तो दे दिया और उसके बाद जैसे ही मखाने दिए, अब कर्म का उदय तो सबको आ सकता है, उस दिन उल्टी नहीं हुई लेकिन जैसे ही मखाने हाथ में आए उसके साथ में इल्ली भी आ गई। अब बताइए मखानों के बीच में तिरूला और इल्ली भी था, उसे देख करके मैं तो अंतराय के लिए तैयार हो गया। पर फिर भी सब लोगों ने कहा कि नहीं जीरो आए जीरो, ऐसा अपन कह देते कि कुछ नहीं महाराज तिरूला लोड़ा नहीं है कि जीव नो जीरो आए जीरा है, तो ऐसा कह दिया। अब हम भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि वैसे ही तो अस्वस्थता 7 दिन से भोजन नहीं किया, और अगर हमने ऐसा अज्ञानतावश ठीक ठीक अंतराय नहीं किया तो भी दोष है। हाँ, अगर आपने ठीक से देखे बिना ही अंतराय कर दिया तब भी आपको दोष है। ये नहीं समझना कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, अंतराय करके आ गए हम तो जीत गए, नहीं। आपने कितना संक्लेशित किया उस घर के लोगों को, बाद में उन्हें ज्ञात होगा कि जीव नहीं था और कोई और चीज थी, फिर भी महाराज ने अंतराय कर लिया, कितना संक्लेश। उस संक्लेश में आप निमित्त बने, जब उससे मालूम पड़ता है कि जीव ही था तो संक्लेश अपने आप दूर हो जाता है कि ठीक तो है जीव था इसलिए महाराज ने अंतराय कर दिया, लेकिन जीव नहीं हूं और फिर अंतराय किया तो बहुत संक्लेश होता श्रावक को, उसका दोष साधु को लगेगा। इसलिए साधु हमेशा सावधानी पूर्वक अपना आहार के समय गवेषणा करता। अब मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने धीरे से कंफर्म करने के लिए आचार्य की तरफ, आचार्य की तरफ देखा कि शायद आचार्य कुछ कहेंगे कि अंतराय करो या नहीं करो। तो आचार्य अभी तक तो मेरे आहार में मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी तरफ देखा तो आचार्य दूसरी तरफ देखने लगे, बड़े अजीब। तो इसका मतलब है कि कंफर्म है। और मैंने दोनों बड़े महाराज जी जो थे उनसे जो थोड़े सहारा दिए हुए थे उनसे कहा कि आप सहारा नहीं दें, मैं बैठूंगा, अंतराय है मेरा। और अंतराय मान करके मैं बैठ गया, कुल्ला करके कायोत्सर्ग करके आचार्य को जब नमोस्तु किया तो उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए अपनी पीछे का स्पर्श मेरे सिर पर किया, आशीर्वाद, तुमने अपने महाव्रतों पर स्थिर रह करके थोड़े से लालच में कि 7 दिन से भोजन नहीं किया, मैं अगर अंतराय नहीं मानूं तो क्या फर्क पड़ता है, सब कह ही रहे हैं कि अंतराय नहीं है जीव नहीं है, मैं भी मान लूं। अगर तुमने बिना विचलित हुए इतने समय के बाद भी अन्न नहीं मिलने पर अपने धर्म में स्थित होकर के अंतराय मान लिया, इससे मुझे प्रसन्नता है। अगर तुम अंतराय नहीं मानते तो मुझे प्रसन्नता नहीं होती, तुमने अंतराय कर दिया इसकी मुझे प्रसन्नता है, जाओ आशीर्वाद देता हूं अपना। और आप आश्चर्य करेंगे कि 7 दिन के अंतराय में जितनी मुझे तकलीफ थी 8वें दिन और ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन अंतराय में भी कोई तकलीफ नहीं हुई, आसानी से पूरा दिन गुजर गया। ये क्या चीज है, धर्म के प्रति अनुराग होने से सारी चीजें आसान हो जाती हैं। भैया अपन तो छोटे थोड़े थोड़े से लोभ में लालच में आकर के चाहे शरीर का हो, चाहे धन पैसे का हो, चाहे भौतिक सुखों का हो, अपने अहिंसा को छोड़ देते हैं, वितरागता को छोड़ देते हैं, ध्यान ही नहीं रहता है, विचलित हो जाते हैं। धर्मानुराग करने वाला व्यक्ति अपने धर्म से परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर भी विचलित नहीं होता, यही उसका धर्मानुराग है। भावानुराग वो है जिसमें अपने धर्म और धर्मात्मा का गौरव कम ना हो सके, इस बात का भावानुरागी ध्यान रखता है, मेरे धर्म का सम्मान कम ना हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूं जिससे कि लोग हंसें कि अच्छा उस धर्म को बिलोंग करते हैं, उस धर्म में तो ऐसा ही है, अगर मैं कुछ करूंगा तो उसकी आपत्ति किस पर आएगी, धर्म पर। बहुत पहले दीक्षा के समय तीन बातों पर विचार किया गया था कि अपने को संभाल करके चलना, क्योंकि अगर थोड़ा भी इस मार्ग में थोड़ी गलती होगी तो किस किस का नाम आएगा, सबसे पहले आएगा कि किस गुरु के शिष्य हैं, हाँ वे तो ऐसे ही, उनके गुरु भी ऐसे ही है। लो आपने थोड़ी सी गलती की, गुरु तक पहुंच गया नाम, फिर गुरु जी के बाद आएगा कौन सी समाज के हैं, साधु बाबा जैन समाज के हैं, अरे ऐसा ही होता है सब, ले तो पूरी जैन समाज बदनाम हो गई, और फिर उसके बाद कहां के हैं, सागर के हैं, तो पूरा सागर का नाम डूब गया, और अंत में किस माता पिता के पुत्र हैं, माता पिता का भी नाम आप रोशन कर सकते हैं, डूब भी सकते हैं। इतनी जिम्मेदारी है मोक्ष मार्ग पर चलने वाले की कि वो सावधानी पूर्वक अगर चलता है तो इन सब का, अपने समाज का, अपने गुरु का, अपने क्षेत्र का, सबका नाम रोशन कर सकता है और सबका नाम बदनाम भी कर सकता है, अपने गौरव को बढ़ा भी सकता है और गौरव को घटा भी सकता है। तो धर्म और धर्मात्मा के गौरव को कम नहीं होने देना, ये भावानुराग है, मेरा धर्म है, मैं ऐसा आचरण करूं जिससे कि धर्म पर कलंक ना लगे, ये सब मेरे साधर्मी है, धर्मात्मा है, ऐसा कुछ भी ना हो जिससे कि मेरे इन धर्मात्माओं पर, साधर्मी जनों पर, इनके सम्मान में कोई कमी आ जाए, इसका भी ध्यान जो भावानुरागी होगा वो अवश्य रखेगा। आप ये नहीं समझना कि महाराज जी तो जब तक मुझे डांट देते हैं, भैया डांटने के पीछे क्या छुपा हुआ है, अनुराग छुपा हुआ है, सबको तो नहीं डांटते, जिसके प्रति अनुराग है, धर्मानुराग, उसको ही समझाएंगे कि भैया ऐसे न करो, ऐसे में तो बदनामी हुई है। आपका सम्मान कम ना हो इस बात की चिंता भी है। मैं यहां पर हूं, चतुर्मास कर रहा हूं, अगर थोड़ा भी आगे पीछे गड़बड़ होती है, कहां कर रहे महाराज चतुर्मास, देखो तो कैसी समाज है, अब लो पूरी समाज बदनाम हो गई, समाज के सम्मान की रक्षा भी मेरे को करनी है, ये भावानुराग है, ये धर्म और धर्मात्मा के प्रति अनुराग का प्रतीक है। उस भावानुराग के लिए उदाहरण आता है, सबका पढ़ा हुआ है किताबों में, बाबा भारती का है ना, बच्चों ने तो खूब पढ़ा होगा, अपन भी जब बच्चे रहे तब अपन ने भी पढ़ा किताब में, बाबा भारती के एक बहुत सुंदर सा घोड़ा था, बाबा भारती उसको बहुत चाहते थे, एक डाकू था खड़क सिंह, तो उस डाकू की नजर उस घोड़े पर थी, बाबा भारती से उसने घोड़े को मंगाया, बाबा भारती ने कहा कि ये तो नहीं दूंगा, तो उसने कहा देख लेना आप, आपके पास नहीं रहेगा, खड़क सिंह जो सोच लेता है उसको पा करके रहता है, और फिर जाकर के भिखारी का वेश बना करके जब बाबा उस घोड़े पर जा रहे थे तब अपाहिज बन करके उस घोड़े पर बैठ गया, और धोखे से बाबा को नीचे गिरा करके घोड़ा लेकर के आगे निकल गया, और उसने कहा कि बाबा मैं खड़क सिंह हूं, आपसे सीधे सीधे घोड़ा मांग रहा था, तब आपने नहीं दिया था, मैंने ऐसे हड़प लिया। तब बाबा भारती ने क्या कहा था कि खड़क सिंह, अब मैं दौड़ कर भी तुमसे घोड़ा नहीं छीन सकता, तुमने मेरा घोड़ा छीन लिया तो ले जाओ, तुम्हारा ही है ये समझ करके, लेकिन इस घटना को किसी से मत कहना। क्यों? तुमने अपाहिज बन करके मुझे धोखे में रख करके और मेरा घोड़ा छीना है, कल के दिन लोग दीन दुखी और अपाहिज लोगों के प्रति सम्मान नहीं रखेंगे, उनके प्रति प्रेम नहीं रहेगा, उनकी मदद के लिए कोई तैयार नहीं होगा, उनको सब चालाक समझेंगे, जैसी चालाकी तुमने अपाहिज और दीनहीन बनकर के मेरे साथ की है, ये घटना किसी से मत कहना। ये है अपने धर्म और धर्मात्मा के प्रति अनुराग। और फिर सबको मालूम है कि इतनी सी बात सुनकर के रात अंधेरे में बाबा भारती के अस्तबल में खड़क सिंह घोड़ा वापस बांध करके चला गया था। हमारे भीतर ऐसा ही धर्मानुराग होना चाहिए, प्रेमानुराग।